महादेव जी को बोले, बेटा तुम जाओ, तुम्हारे भाई की शादी है। वो कहने लगे, पिताजी इस संसार में कौन किसका है। वो हमेशा उदासी भाव में रहते थे। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जो अपने पिता को सिर्फ पिता नहीं जानते थे, गुरु जानते थे, ईश्वर रूप में जानते थे कि मेरे पिताजी ही गुरु हैं, हमारे पिताजी ही ईश्वर हैं, भगवान हैं, पर ब्रह्म हैं। जब साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को बोले, बेटा तुम जाओ, सत वचन करके जाने लगे। जाते वक्त साहब गुरु रामदास जी महाराज बोले, बेटा जब तक कोई संदेश ना भेजू, जब तक ना बुलाऊं, तब तक नहीं आना, वहीं रहना, सत वचन। सत्संग की ऐसा इतिहास कार बताते हैं कि लगभग एक साल गुरु महाराज रहे हो। काफी समय के बाद जब कोई संदेश नहीं आया तो साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पत्र लिखे, विरह, क्योंकि जिसको साईं के साथ प्रेम हो, गुरु के साथ प्रेम हो, वो उनके दर्शन के बगैर कैसे रह सकता है। मछलियां पानी के बगैर रह सकती हैं, सूरज अपना प्रकाश बंद कर सकता है, लेकिन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्रेम अपने पिता गुरु के साथ इतना कि एक दिन उनसे दूर रहना इनके लिए बहुत कठिन काम था। एक पत्र लिखे कि महाराज हमसे क्या गुनाह हो गया है जो आप मुझको नहीं बुला रहे हैं, हो भी गया हो तो मुझे माफ कर देना, आप मुझे जल्दी बुला लो। वो पत्र जब पृथ्वी चंद के हाथ में गया, वो पत्र अपने पास रख लिया। उसके मन में कपट था कि ये जो गद्दी का मालिक मैं बनूं, क्योंकि साहब श्री गुरु रामदास जी साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। प्रेम का कारण हुक्म की पालना और पिता में ईश्वर और गुरु देखना। साध संगत जी एक पत्र, दूसरा पत्र भेजे, वो भी पृथ्वी चंद ने रख लिया। तीसरा पत्र साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज लिखे और ये कह करके भेजे कि ये पत्र पिता गुरु साहब गुरु रामदास जी के हाथ में देना। जब वो पत्र गुरु महाराज के हाथ में मिला कि पिता गुरु जी मेरे से क्या गुनाह हो गया है, मैं दो पत्र पहले भी लिख चुका हूं, मेरा मन लोचे गुरुदर्शन ताई, विलप करे चात्र के लिए, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मेरा रात दिन ऐसे लगता है जैसे पानी से मछली को निकाल कर गर्म रेते में सुट दिया, आप दया करो, आप अपने चरणों में मुझे बुला लो। कहते जब वो पत्र पढ़े साहेब गुरु रामदास जी तो उनके आंखों से प्रेम के आंसू बह पड़े। साध संगत जी, गुरु और सिख का जो प्रेम होता है ना, वो इलाही प्रेम होता है, परम प्रेम होता है। उसी वक्त जब पृथ्वी चंद को बुलाए कि भाई उन्होंने दो पत्र भेजा है, वो पत्र कहाँ है, पृथ्वी चंद ने कहा मुझे कोई पता नहीं। जब पृथ्वी चंद के कमीज को लाया गया तो उसके कमीज से दो पत्र निकल गए। गुरु के साथ कपट, गुरु के साथ चलाकी करने वाला व्यक्ति वो जीरो हो जाता है। गुरु के चरणों में तो भोले भाई मिले रघुराया, चतुराई न चतुर भुज भाई है। गुरु के चरणों में तो एक महीने की बालक की तरह सब कुछ गुरु के चरणों में सौंपना पड़ता है। सत्संग जी साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की अमोलक वाणी आशा की वार, जिसकी कथा आप लड़ीवार श्रवण करते हो, यहां पर गुरु महाराज उपदेश करते हैं, सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंघाए पार। सिखी सिख्या गुरु विचार, गुरु का विचार क्या है, गुरु का उपदेश क्या है कि जो गुरु कहे उसको सुनकर मनन करके उसी प्रकार जीना। गुरु के वचनों को पहले बड़े ध्यान से सुनो। जब आप साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को पढ़ते हो ना, तो इस भाव से पढ़ो कि गुरु हमको हुक्म कर रहे हैं और सुन के समझ के चिंतन करके वैसा ही जीने का प्रयास करो, तब तो तुम्हारा गुरु के साथ नाता जो है ना वो बनना आरंभ हो जाएगा। जैसे जैसे आप गुरु की आज्ञा का पालन, हुक्म की पालना करोगे तो गुरु मेरे संग सदा है। गुरु का हुक्म पालन करना यूं समझो गुरु को अपने हृदय में बसाना है और गुरु के हुक्म को अपने चित्त में नहीं बैठाना या विसार देना या अनगहली करनी या लापरवाही करना, समझो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। यहां पर गुरु महाराज उपदेश करते ने सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंघाए पार। जो गुरु के विचार को, गुरु के उपदेश को सीख कर अपने जीवन में घटाता है ना, तो उसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। साहेब श्री गुरु हरगोविंद साहेब जी महाराज का एक सिख हुआ है भाई जवंदा। गुरु महाराज भाई जवंदा को लेकर कहीं गए किसी सिख के घर, वहां पर सत्संग था। जाते वक्त गुरु महाराज भाई जवंदा को रास्ते में खड़ा कर दिए कि तुम यहीं रहो, लौटते वक्त तुमको नाल ले लूंगा। सत्संग जी गुरु महाराज गुरुमत का उपदेश करके और रास्ते से अपने स्थान में आ गए। भाई जवंदा वहीं पर खड़ा रहा। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, तीन दिन बीत गया, कहीं तो लिखा है कि वो सात दिन तक वहीं खड़ा रहा, कहीं कहते हैं वो तीन दिन खड़ा रहा। तीन दिन के बाद जब गुरु महाराज कहते भाई जवंदा दिखता नहीं है, आया नहीं, किसी सिख ने कहा गुरु महाराज आप हुक्म किए थे कि आप यहीं खड़ा रहो, लौटते वक्त ले लेंगे, तो ये तो वहीं पर खड़ा। कहते हैं साहेब श्री हरगोविंद साहेब जी महाराज खुद भाई जवंदा के पास गए और आके कहते हैं, भाई जवंदा तू इथे खड़ा है, महाराज आपने हुक्म किए थे कि तू यही खड़ा रह, आते वक्त मैं ले लूंगा। हमने तो जो आपने हुक्म किए थे उसकी पालना करना था। कहते हैं साहेब श्री हरगोविंद साहेब जी महाराज उसी वक्त गले लगाए और हमेशा के लिए था अपने हृदय में दे दिए भाई जवंदा। गुरु को जीतना है, गुरु को जीतने का एक ही तरीका है। कदाचित मन में प्रश्न हो कि गुरु को भी जीता जा सकता है, हाँ गुरु को भी जीता जा सकता है। प्रेम और हुक्म की पालना करके, जो गुरु के हुक्म की पालना और गुरु की याद में जो डूब जाता है ना, वो गुरु को भी जीत लेता है, गुरु बस में हो जाते हैं। सत्संग जी यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, सिखी सिखिया गुरु विचार, नदरी करम लंघाए पार, कोलू चरखा चक्की चक, थल वारोले बहुत अनंत, लाटू माथानिया अनगाह, पंखी भोंदिया लय नसा, सूए चार भवाइये जंत, नानक भोंदिया गणत न अंत अंत। कोलू चरखा चक्की चक, इस संसार में सब कुछ चलायमान है, कोई भी स्थिर नहीं है। अचल जो है एक परमात्मा वाहेगुरु है, अच्युत है और सब कुछ चलायमान है, सब कुछ। कोई भी इस संसार में चंद्रमा सूर्य तारे पृथ्वी नदियां पहाड़ सब कुछ चल रहा है, सब कुछ। चंद का उदाहरण गुरु महाराज दे रहे हैं, कोल्हू तेली का कोल्हू जो है वो भी चल रहा है, चरखा माताएं जो आटा वगैरह पीसती थी गांव में वो भी चल रहा है, चरखा भी चल रहा है जिससे सूत कतते हैं, चक्की भी चल रहा है, थल वारोले बहुत अनंत। और थल वारोले जो मरुथान में जहां पर रेगिस्तान होता है वहां पर देखना, जब हवाएं तेज चलती है ना तो घुमन घेरी हो जाता है, वो भी कुछ चल रहा है। यहाँ पर गुरु महाराज आगे उदय लाटू माधानिया अनगाह, बच्चे जो है धागे पा करके लट्टू को नचाते हैं। भारत में देखना कि ऐसे काठ के बने होते हैं, उसमें धागे पा करके बच्चे उसको घुमाते हैं। और माताएं बहनें जब दही रिड़कती हैं तो मधानी से रिड़कती हैं। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चलायमान है। लाटू माधानिया अनगाह, पंखी भोंदिया नय नसा। देखो पंखी, ये जो पंछी हैं ये भी चलायमान है, चल ही जा रहा है। कहते हैं हंस एक बार उड़ारी करके 3,000 किलोमीटर एक साथ चला जाता है, ऐसे ऐसे पंछी एक देश से दूसरे देश जो है बिना तेल वगैरह लिए बिना फ्यूल के ही चले जाते हैं। देखो वाहेगुरु की कैसी कृपा, ये सब कुछ जो है इस संसार में अनंत ही है। पंखी भोंदियां लैन ना साह, सूए चार भवाइये जंत, नानक भोंदिया गणत ना अंत। साहेब गुरु महाराज उपदेश कर देने के नानक भोंदिया गणत ना अंत। मैं किसका किसका उदाहरण दूं, इस संसार विच सब कुछ चलायमान है, सब कुछ। बंधन भंग बंध भवाए सोए, पये किरत नचे सब कोए, नच नच हस चल से रोए, उड़ न जाए सिद्ध न होए, नचन कुदन मन का चाव, नानक जिन मन भाव तिना मन भाव। बंधन बंध भाए सोए, पये किरत नचे सब कोए, इस संसार विच बड़े ध्यान से देखोगे ने तो सब कुछ नच रहा है, सब कुछ। पंखी नच रहे हैं, बादल देखना आकाश में वो भी नाच रहा है, चल रहा है, चलायमान है। हवाएं चल रही हैं, नदियां चल रही हैं, सब कुछ एक प्रभु परमात्मा के अलावे सब कुछ चलायमान है, सब कुछ चलायमान है। चलायमान का भाव है नाशवान है, सब कुछ मौत के मुंह में जा रहा है, काल के मुंह में जा रहा है। एक प्रभु परमात्मा वाहिगुरु निरंकार वो जो है वो अकाल है, वो मौत में नहीं जा रहा, बल्कि मौत जो है मौत भी उसके इशारे से काम कर रहा है। यहां पर साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश करते ने, नचन कुदन मन का चाव, नानक जिन मन भाव तिना मन भाव। ये जो पाखंड करते हैं रास करके, रामलीला करके, या तरह तरह के जो है कृष्ण की लीला करते हैं, रास रचाते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए, सब पैसे के लिए, मतलब एक बिजनेस बना दिया है और नकल करते हैं। नचन कुदन मन का चाव, परमात्मा इससे प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु परमात्मा को प्रसन्न करना हो तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्रेम। प्रेम के अलावे कोई चीज नहीं है। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जेरुचे शीश दिए ले जाए। प्रभु परमात्मा को यदि रिझाना है तो हृदय में प्रेम हो। कहते हैं कि मीरा पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण की गोपियों में एक थी। मीरा का जो प्रेम है प्रभु के प्रति, उसके संबंध में दो मिनट बताता हूं। एक दिन एक साधु आया भिक्षा मांगने के लिए, उसके पास कृष्ण की मूर्ति था। जब मीरा देने के लिए आई भिक्षा, तो कृष्ण की मूर्ति को देखी ना, देखते ही उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण आ गया, ख्याल आ गया। मीरा कहती है कि मूर्ति मुझे दे दो। वो साधु कहता है, ना ये तो मैं तो इसको पूजा करता हूं, ये मेरा इष्ट है, ये कैसे दे सकता है। मीरा कहती है, इसके बदले तुम कुछ भी ले लो, ये मुझे दे दो। लेकिन वो साधु कहता है, हमने नहीं देना। वो चला गया साधु। कहते हैं साध संगत जी, सारी रात मीरा सोई नहीं, सोई नहीं। उसको पूर्व जन्म का याद आ गया सब कुछ है। पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण की गोपी थी और उसका नाम ललिता था। इधर साधु रात भर एक ही स्वप्न देख रहा है और आकाशवाणी हुआ, ये जो मूर्ति ये तेरा नहीं है, ये तेरे पास अमानत था, वो जा करके मीरा को दे के आओ, ये उसकी चीज है। साधु अमृत वेले आया और उस मूर्ति को देके उसके चरणों को छुआ कि धन्य है तू कि मैं इतना समय से भक्ति कर रहा हूं, सिमरन कर रहा हूं, और हमें इतना प्रेम नहीं हुआ, प्रभु तुमको इतना प्रेम कर रहे हैं, इसमें कोई ना कोई अवश्य है। वो साधु ने चरणों को छुआ मीरा का। सात संग जी कहते हैं कि मीरा ने रात दिन रोटी बनाए, कुछ करे, सिमरन करे, भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखी जाए, देखी जाए, देखी जाए। उस भक्ति का क्या प्रताप हुआ? देखो, भक्ति और सिमरन कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कृष्ण की भक्ति का उसको क्या फल हुआ कि उसको ब्रह्म ज्ञानी भक्त रविदास जी गुरु प्राप्त हुए। भक्त रविदास जी उनके गुरु थे। जब मीरा भक्त रविदास जी सड़क के किनारे बैठकर जूता बन रहे ने, मीरा वहां पर जाके चरणों को दबाती है। ये परवाह नहीं करती कि मैं रानी हूं, स्त्री हूं, ये परवाह नहीं करती। मीरा खुद कहती है, साध संग करी करी लोक लाज हुई। आज जब कहते हैं ना कि इतना डेवलप्ड हो गया है लोग, आज के समय में भी कोई स्त्री यदि कोई साधु के चरणों को दबाने लगे तो जो बड़े बड़े अपने को सत्संगी मानते हैं ना, उसके चित्त में भी शंका आ जाएगा कि जरूर कोई खराब बात। उस समय में जबकि जो है लोग बड़े पर्दे में रहते थे सब कुछ, मीरा साफ कहती है, साध संग करी करी लोक लाज हुई। साध संगत जी मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमन। मीरा ने भक्त रविदास जी के चरणों को रोज दबाती है, उनसे ज्ञान सुनती है और भक्त रविदास जी के उपदेश को सुन सुनकर उसके अंदर भी प्रकाश हो गया। भक्त रविदास जी एक ऐसे महान संत, महान भक्त हुए हैं कि एक साधु आया उनके पास और कहता है, भक्त जी जो भी लोग आपके पास आते हैं, आप प्रसादा छकाते हो, कुछ खिलाते पिलाते हो और मैं देखता हूं आपके पास कोई पैसा वगैरह है नहीं, ऐसा करो मेरे पास एक हीरा है, ये रख लो, आपको जब जरूरत पड़े क्विंटलों सोना बना लेना और लंगर छकाओ, आश्रम बनाओ, जो मर्जी करो। भक्त रविदास जी कहंदे ने, मैं की करूंगा इसको लेके, तू अपने पास रख। वो साधु ने बहुत प्रार्थना किया, बहुत रिक्वेस्ट किया है कि नहीं आप ले लो, कहते फिर ऐसा करो झोपड़ी में कहीं पर रख दो। वो साधु ने झोपड़ी में रख दिया। एक साल के बाद फिर आया साधु, ये सोचकर कि उन्होंने तो बड़ा कुछ बना लिया होगा, महल बना लिया होगा, बड़ा लंगर चल रहा होगा, सारा कुछ। भक्त रविदास जी के पास जब वो साधु आए साल के बाद, देखते वही जूतियां गंढ रहे हैं, वही उपदेश कर रहे हैं। नमस्कार किए, भक्त जी मैं आपको एक हीरा दे के पारस गया था, आपने उसका उपयोग किया? कहते वो तो मैं तो भूल ही गया। आपने कहाँ रखे उसको? तू जहां रख गया होगा वही होगा। देखो, कोई ख्याल ही नहीं है, माया का कोई ख्याल नहीं है, इतनी ऊंची अवस्था थी। लेकिन हम लोग क्या समझेंगे कि गरीब है बेचारा, रोजी रोटी नहीं, क्वालिफाइड नहीं है, इसको अच्छी नौकरी नहीं मिला है, इसलिए जूतियां करना है, हमारी आंख ऐसी है। लेकिन जिनको इतना कुछ मिल रहा है उनको माया से कोई लगाव ही नहीं है। मीरा ने अपने गुरु भक्त रविदास जी से सब कुछ प्राप्त कर ली। मीरा के हृदय में इतना प्रेम कि उसके रिश्तेदारों ने इतना कष्ट दिया कि तू किसको गुरु बनाई है, वो तो चमार है, तू ब्राह्मण को गुरु बनाओ, उसको बनाओ, उसको बनाओ। वो तो कहती है कि भक्त रविदास जी तो मेरे परमात्मा है, वो गुरु, वो तो हमारे लिए परमात्मा है, वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं। वो जब भगवान कृष्ण की गीत भजन सुनाते हैं तो मैं डूब जाती हूँ। साध संगत जी, एक बार मेरा भगवान कृष्ण को याद करते करते पैदल नंगे पांव राजस्थान से वृंदावन गई। वहां वृंदावन का मंदिर में जब प्रवेश करने लगी, पुजारी ने रोक दिया कि इस मंदिर में स्त्री का प्रवेश नहीं है। वो मीरा हंसने लगी, कहती है कि तू पुरुष कहां से आ गया, तू पुरुष कहां से आ गया। पुरुष तो एक वाहेगुरु मेरा कृष्ण है, एक कृष्ण के अलावे इस जगत में तो सब नारियां हैं, तू पुरुष कहां से आ गया। कहते हैं मीरा ने उस पुजारी को परे किया, अंदर गई और भगवान कृष्ण की मूर्ति के को गले लगाई और जीते जी उस मूर्ति में प्रवेश कर गई। लौट के नहीं आई मीरा, उस मूर्ति में प्रवेश कर गई। यदि तुम्हारे अंदर भक्ति हो ना, तो ये प्रकृति में भी अद्भुत घटनाएं घटती हैं। ये भक्ति ऐसी चीज है कि भक्ति से भगवान भी बस में आ जाते हैं, गुरु भी बस में आ जाते हैं। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, नचन कुदन मन का चाव, नानक जिन मन भाव तिना मन भाव। जिसके चित्त में प्रभु का डर है, क्या डर, कि वो हजारों आंखों से हमें देख रहा है। सहस्त्र नयन नन नयन है तो देखो, हे प्रभु आपकी हजारों आंखें हैं, ये सारी आंखें हैं किसकी, ये भी तो देखो। वो तो सहस्त्र नयन, हजारों लाखों की बात नहीं है, जितने भी कीड़ी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबके अंदर जो आंख है ना, उन आंखों से वाहेगुरु ही देख रहा है। सहस्त्र नयन नन नयन है तो एक सहस्त्र मूरत नना एक हो। वो परमात्मा एक है, फिर अनेक हो जाता है, फिर एक हो जाता है। ये उसकी लीला है, उसकी लीला को देखकर तुम प्रसन्न हो, तर्क वितर्क में ना पड़ो। भक्त वो है, गुरसिख वो है, जो हमेशा पॉजिटिव ख्याल रखता है, तर्क वितर्क में नहीं पड़ता। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, पौड़ी नाम तेरा निरंकार है, ना नहीं है नरक ना चाहिए, जियो पिंड सब तिसदा दे खाजे आग गवाइए। नाम तेरा निरंकार है, ना नहीं नरक ना जाइए, हे वाहेगुरु नाम तेरा निरंकार है। जो तेरा नाम है वो आकार से रहित है, तेरा रूप तेरा नाम सब कुछ आकार से रहित है। हे वाहेगुरु हे नारायण, सच्चाई तो ये है कि तेरा ना कोई रूप है ना कोई नाम है, तू आकार से रहित है। चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहंजय, रूप रंग अर रेख भेख किछ कह न सकत कह, अचल मूरत अनुभव प्रकाश। वो अनुभव स्वरूप है, आप अंदर अपने स्वरूप में बैठ जाओ। आत्म में पार ब्रह्म लहनते, चारों तरफ भाग दौड़ करके एक ही थां है जहां बैठने के बाद आनंद की झरना होती है, वो तुम्हारा हृदय है। अपने हृदय विच बैठ करके उस निरंकार को याद करो जो हजारों कानों से सुनता है। वो तो तुम्हारी सिर्फ भावना देखता है। और ऐसे भी भक्त हुए हैं, उनको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, उनकी भावना को समझकर प्रभु उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। भावना, जब उनका नाम लो ना प्रभु का, इतने प्रेम से लो, बहुत रौला पाने की जरूरत नहीं। जैसे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जैसे हम कोई प्यारे को बुला रहे हैं, समझे ना, जब नाम सिमरन करो, आप कहीं भी घर में करो, गुरु घर करो, कहीं भी करो, तो उस प्यारे को ऐसे बुलाओ हाजर नाजर समझ के हे वाहे गुरु। ये जो हृदय है जन्मों से सुना पड़ा है, मैंने श्रद्धा रूपी फूलों से हृदय को सजाया है, आप आओ और यहां बैठ जाओ। बस एक ही बेंती, एक ही जोदड़ी, एक ही अरदास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए, तेरी दात नहीं चाहिए। तेरी दात को लेकर हम जन्मों भटके हैं, हे वाहेगुरु तू चाहिए बस। इससे कम में राजी नहीं होना, इससे कम में राजी हो गए हैं तो बार बार जन्म ना लेना, बार बार नहीं। भगवान कहें भी कि तुमको स्वर्ग दे देता हूं, पृथ्वी का राज देता हूं, महाराज मुझे वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? बस इस हृदय में हमने श्रद्धा रूपी प्रेम रूपी फूलों से बिछाया है, आप आके सिर्फ बैठ जाओ और मुझे नहीं चाहिए। जब आप इतने हृदय से उसको पुकारोगे और वो ना बैठे, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता। नाव तेरा निरंकार है, ना ही लइए नरक ना जाइए। और जब तेरे हृदय में निरंकार बैठ जाए तो फिर नरक जाओगे? वो भी स्वागत करेगा फूलों से, वो तो हृदय ही बैकुंठ हो जाएगा। बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं, तेरा हृदय ही बैकुंठ हो जाएगा। जहां प्रभु है वहीं सारे सारे संसार के सुख वही है, क्योंकि परमात्मा आनंदा स्वरूप है। नाम तेरा निरंकार है, ना ही लइए नरक ना जाइए। जियो पिंड सब तिसदा, दे खाजे आख गवाई है। जियो पिंड सब तिसदा, हे वाहेगुरु सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको सौंपते क्या लगे मेरा। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मन भी तेरा है, तन भी तेरा है, धन भी तेरा है, ये सब कुछ है। तूने एक अमानत दिया था, ये तुमको लौटाना। कबीर जी कहते ने, बहुत जतन से ओढ़ी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी। हे वाहेगुरु ये शरीर रूपी जो चादर दिया था, बिना कुछ दाग लगाए, बिना मैला किए, जैसे दिया था तुमको वैसे ही लौटा रहा हूं। मौत वाले दुखी नहीं होना, कोई दुख होने का कारण ही नहीं। ये तो चादर दिया था, उसको हंसते हंसते लौटा दो, बस खत्म बात। दुखी किस बात का हूं? दुखी तो तब हो जब मेरी मौत हो गई, जब तुम्हारा हाथ परमात्मा ने पढ़ लिया है तो मौत बिगाड़ सकता है तेरा कुछ? जब प्रभु ने तुमको अपने आंचल में रख लिया है, मौत क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर दे ने, जियो पिंड सब तिसदा, दे खाजे आप गवाइए। तीन चीजें, दे खाजे आप गवाइए। इस संसार में जीने की एक कला बता रहे हैं गुरु महाराज। पहले कुछ खाओ ना, खाने से पहले दो, और दे करके अहंकार ना करो कि मैं दाता हूं ना। दाता तो ईश्वर है, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे तोट ना आवई अगनत भरे। दे खाजे आप गवाइए। एक बार भक्त नामदेव जी पहले साधु संतों को प्रसादा छकाकर आप छकने लगे। जब छकने लगे ना, अभी बैठे कि एक कुत्ता आ गया, उन्होंने बोले ठाकुर आओ आओ, तुम भी आओ तुम भी आओ। वो आया और रोटी लेके भागने लगा। जब रोटी लेके भागने लगा ना, तो भक्त नामदेव जी कौली में घी था, उसके पीछे दौड़ पड़े। नारायण मैं चोपड़ी खाता, तू सुखी खाएगा, ऐसा ना करो। वो रिक्वेस्ट करी जाते, प्रार्थना करी जाते, ठहर जाओ नारायण ठहर, देखो कैसी दृष्टि होगी। उनको कुत्ते में परमात्मा दिख रहा है, हमें बंदे में परमात्मा नहीं दिखता। देखो हमको बंदे विच परमात्मा नहीं दिखता। आज मनुष्य नफरत में जी रहा है, नफरत। लेकिन विचार करो किस बात का नफरत। जब हृदय में मन में नफरत आवे ना, तो प्रार्थना करो प्रभु से, हे प्रभु हमारी जो लाइफ है ना 60 साल की, 5 साल कम कर दो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हृदय में नफरत ना लाओ। जरूरी नहीं कि मैं 100 साल जीना है, 5 साल कम कर दो मेरी आयु। जहां नफरत, द्वेष, घृणा, वैमनस्य, वहां प्रभु कैसे रह सकते हैं? देखो ना, कहते हैं एक कुत्ता भी बैठता है ना तो पूंछ से साफ कर लेता है, नहीं पहले साफ करके फिर बैठता। परमात्मा तेरे हृदय से बैठना है तो गंदे छाते बैठ जाऊंगा, कैसे बैठूंगा? और सच्चाई पूछो मुझसे तो परमात्मा आना क्या है, वो तुम्हारे पास खड़ा है, वो बैठना भी चाह रहा है लेकिन साफ नहीं है ना बैठने का जगह, इसलिए वो खड़ा है। प्रभु खड़े, जल्दी जल्दी मन को साफ कर लो। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को शुद्ध करना, मन को पवित्र करना ही साधना है। आत्मा को क्या पवित्र करना है? आत्मा तो पहले से पवित्र है। साधना सिर्फ इतनी ही है कि मन पवित्र हो जाए। भक्त कबीर जी कहते ने, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसो घट घट राम है मूरख बुझे नाही। कस्तूरी कुंडल बसे, जो सुगंध है ना, मृग बेचारी हिरन उसको खुशबू आता है झाड़ियों से, वो दौड़ती है और दौड़ दौड़ कर उसका सिंह झाड़ियों में फंस जाता है और टकरा के मर जाती है। वास्तविक में वो खुशबू उसके नाभि में छूंदा है, नाभि में कस्तूरी होता है। वो जो कस्तूरी है ना आनंद, और आनंद जो स्वरूप है वो प्रभु का है। प्रकाश, आनंद, सत्य, ये जो है वो तुम्हारे हृदय में है। जो खुशबू है वो अंदर से आ रहा है। हम कभी धन में, कभी मान में, कभी पद में, कभी कुर्सी में, इन चीजों में सुख खोजते हैं, जबकि वो सुख और आनंद वो तुम्हारे हृदय में है। इसीलिए तो गुरु महाराज कहते हैं, आप नड़े गिरवान में सिर नीवा करते हैं। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब चाही जहां चाही गर्दन झुकाई देख ली। टू गो बैक द रेट्रीट, अपने अंदर झांको, वो तो पहले से बैठा हुआ है, सिर्फ उसके दर्शन की आवश्यकता है। यहां पर गुरु महाराज उपदेश करते ने, जियो पिंड सब तिसदा दे खाजे आख गवाइए। जब प्रभु ने कुछ दे तुमको, और दे क्या, सब कुछ दिया है तुमको, क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है? जिसकी पास आंखें नहीं है उससे पूछो ये आंख का क्या कीमत है। कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह जी का एक आंख थोड़ा खराब था, डॉक्टरों को कहा कि ऐसा करो, कोई है ऐसा उपाय, इस आंख को ठीक को कर दे तो मैं आधा राज्य दे दूंगा। यदि कोई मेरी आंख को हेल्दी कर दे दूसरे आंख की तरह, मैं आधा राज्य दे दूंगा। बताओ, प्रभु ने जो तुमको दिया है आंखें, कान, नाक,
एक एक जो पार्ट्स है उसका कितना कीमत है प्रभु? कहते दिया ही नहीं कुछ प्रभु। ऑलवेज थैंक्स, हर हालत में उसको थैंक्स करो। हे प्रभु, ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर सोते हैं, आपने मुझे कमरा दिया है रहने के लिए। हे वाहेगुरु, ऐसे लोग हैं जो दो दिन में रोटी खाते हैं, हमको दोनों टाइम दे रहे हो। ऐसे लोग हैं जिसके कपड़े फटे हैं, हमें तो बहुत अच्छा कपड़ा दिया। हर हाल में थैंक्स करना है उसको, कभी शिकायत नहीं। जिथे प्रेम हुंदा है उथे शिकायत हुंदा है? नहीं नहीं, उथे शिकायत नहीं। जहां प्रेम होगा वहां शिकायत नहीं होगा, जहां प्रेम होगा वहां थैंक्स होगा। और प्रेम का स्वभाव है सब कुछ दे करके जताना नहीं। दे खाजे, दे करके जो है खाना है और जताना नहीं। जहां प्रेम होगा वहां जताना क्या है? वो तो प्राण दे करके भी नहीं जताते। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने हैं, देख खा जाए आंख गवाइए, अर्थात आपा भाव को गवा दे, अहंकार को मिटा दे। प्रेम और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रहता है। स्वभाव है प्रेम का ऐसा कि प्रेम तो मिटना जानता है, लुटाना जानता है। प्रेम और वासना में क्या फर्क है? वासना में लेके खुश होता है आदमी, किसी का सुख छीन के खुश होता है, किसी का कुर्सी छीन के खुश होता है, किसी का धन खो करके खुश होता है। वासना से भरा हुआ व्यक्ति सारी दुनिया को भी दुखी करना पड़े तो भी दुखी करता है अपने सुख के लिए। लेकिन जो प्रेमी व्यक्ति है ना, वो तो तति तवे पर भी बैठने को राजी हो जाता है, बशर्ते कि सारी दुनिया सुखी हो। बंद बंद कटाने को भी राजी हो जाता है कि कोई हर्ज नहीं। शीश देने को भी तैयार हो जाता है कि यदि इस सिर को देने से लाखों का धर्म बचता है तो और क्या चाहिए मुझे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकद मोहे धरे। हे वाहेगुरु, एक गुरु साहब की क्या देन दे सकते हैं हम लोग? दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के साथ प्रेम किए हैं। उस प्रेम का फल है कि ये सारा कुछ है। यदि गुरु महाराज की कुर्बानी नहीं होती तो मंदिरों में घंटे नहीं बजने थे, वहां आरती नहीं होनी थी, हम लोग जो है अभी ये जो स्वरूप देख रहे हैं सिखी का ये नहीं होना था। ये सब कुछ वो होना था जो कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए सात संग जी यहां गुरु महाराज उपदेश कर देने, जियो पिंड सब दिसदा, दे खाजे आख गवाइये, जे लोड़ है चंगा आपना, कर पुन्नम नीच सदाइये। जे लोड़ है चंगा आपना, यदि आप ये चाहते हो कि मेरा लोक परलोक आनंद से भर जाए तो कुछ पुण्य करो। पुण्य क्या है? दान देना, सिमरन करना, सेवा करना, दया करना, और हमेशा प्रभु को हाजर नाजर समझना। वो कर्म जिससे सबका भला हो उससे पुण्य बढ़ता है, और वो कर्म जिससे किसी का दुख हो उससे पुण्य खत्म होता है। एक मोटी सी बात है, वो कर्म कभी नहीं करना है जिससे कि हमें दरगाह विच सिर नीवा करना पड़े। वो कर्म नहीं करना है, वो कर्म करनी नहीं है। साध संगत जी, इस देश में हम आए तो हैं, लेकिन प्रभु ने जो एक रिश्ता जहां बना दिया है उसको कायम रखें, कायम रखें। जो हमारी संस्कृति है भारत की उसको कायम रखें, उसी में सुख उसी में आनंद है। क्योंकि भारत, जो भारत की परंपरा है, संस्कृति है, उससे बड़ी संस्कृति दुनिया में कहीं भी नहीं। लोग फ्रस्ट्रेटेड है, नशा करते हैं, मरते हैं, क्यों? क्योंकि अपनी मन के पीछे चलते हैं, गुरु के पीछे नहीं चलते। यहाँ पर जे लोड़ है चंगा अपना कर पुण्य नीच सताए, पुण्य तो करना है लेकिन अहंकार नहीं करना है। दिया 100 रुपया और पंखे में नाम लिखा दिया, ये दान किया। तीर्थ व्रत और दान कर मन में रखे गुमान, नानक निफल जात तिह ज्यों कुंचर स्नान। हाथी को आप नदी में ले जाकर के स्नान कराओ चंगी तरह और परफ्यूम छिड़क दो, पेरिस से ले करके उसके ऊपर परफ्यूम छिड़क, बाहर आएगा ना, आकर के अपने ही सूंड से धूल लेके अपने सिर पर डाल लेता है। जो लोग दान दे के अहंकार करते हैं ना, वो हाथी वाला काम करते हैं, हाथी। इसलिए दे करके जताना नहीं है, जो लिया है ना उसको थैंक्स करना है कि प्रभु ने, प्रभु कितने दयालु हैं कि इस हाथ का उपयोग किए आगे देने के लिए। दे करके प्रभु को थैंक्स करना है, हे प्रभु इस हाथ को आपने योग्य समझा है, एलिजिबल समझा है, इस हाथ से देने के लिए जो है ना आपने अच्छा समझा है, आपका धन्यवाद है। मैं कौन होता हूं जो दूं, भिखारी दूसरे को क्या दे सकता है। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, जे लोड़े चंगा अपना कर पुण्य नीच सदाइए, जे जरवाना परहर जरवेश करेंदी आई। आइए, जे जरवाना परहर है, जब काल आ जाए ना तो उसको दूर भगाने की कोशिश मत करो, ना ना ऐसा कोशिश मत करो। कहते हैं राजा दशरथ एक दिन सुबह उठ के पगड़ी बांध रहे सन शीशा में देख करके, सुबह देखे कि एक केस जो है ना सफेद हो गया है। एक केस सफेद देख करके गए मंत्रिमंडल के पास, सारे मंत्रियों को बुलाए और कहते हैं ऐसा करो कि काल हमारे पास आ गया है, अब मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, अब जाके मैं भजन करूंगा सिमरन करूंगा, इस गद्दी का जो योग्य है उसको बैठवाओ। ये केस सफेद जो होते ना, झुरियां पड़ती है ना, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। वो एक मैसेज भेजते हैं कि काल आ रहा है तेरे पास, उसके आने से पहले चेत जा, ये मैसेज है। लेकिन दुर्भाग्य है हम कितने बेवकूफ हैं कि प्रभु काल को भेजता है, केस सफेद करता है, हम कालिक लगा देते हैं इसमें। नहीं देखो, हमने लेजर करके जो है सो झुरियां हटा लेते हैं, अरे ये नहीं देखते कि वो मैसेज दिया है, वो मैसेज को पढ़ते नहीं हम। तो जब मैसेज को पढ़ोगे नहीं तो आके एक बार में झपट के ले जाएगा, तो उस वेले चाहोगे ना चेतना तो फिर नहीं चेत सकते उस वेले नहीं। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, जे जरवाना पर है जरवेश करेंदी आइए, को रह न भरिए पाइए। इस संसार विच शरीर करके कोई अमर नहीं हुआ है, कोई अमर नहीं हुआ। एक छोटी सी कहानी 2 मिनट की, 2 मिनट तो है ना, क्योंकि जत्थेदार को तो थोड़ा आज्ञा ले लेनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था वो जी क्या हुआ कि रात में सपना देखा, उसको मैसेज आया रात में कि मैं कल आना है, तुम तैयारी कर लेना, जिसको जो देना है चेक वगैरह दे देना, बैंक बैलेंस वगैरह अपना रजिस्ट्री करा देना, बच्चे को जो भी झंझट निपटा लेना। ऐसा नहीं कि उस वेले कहोगे मुझे 10 मिनट टाइम दो तो मैं देना नहीं है, मतलब रात को आया मैसेज उसको। मूर्तिकार था बहुत बड़ा, कहते कोई बात नहीं ये सब आते रहता है। उसने जी 10 मूर्तियां बनाया अपने अपनी शक्ल का 10, और बीच में जाके बैठ गया वो आप एकदम देखने में एक जैसा सब। यमराज आया लेकर के फोटो वगैरह एड्रेस सारा ईमेल वगैरह सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक शकल का 10 आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। परमात्मा ने जिसको इस जगह इस संसार में बनाया ना सब अद्वितीय है, एक के हाथ की रेखा मस्तक की रेखा दूसरे से मिलती नहीं, ये 10 कैसे हो गया। यमराज लौट के गया धनुराज के पास, मैंने एक अजीब चीज देखा है। क्या देखा? आपने जिसका एड्रेस दिया ना जिसका फोटो दिया लाने के लिए वो तो 10 है। धर्मराज कहते हैं तुमको वो लिखा हो? कहते नहीं आप चलो। धर्मराज खुद आया, आता तो नहीं कभी, लेकिन ये आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए खुद भी आया। वो देख के कहता है कोई बात नहीं चिंता ना करो, मुझे पता आदमी की कमजोरी का। वहां पर ने एक एक मूर्ति को देखने लगा गौर से धर्मराज, कहता है कि बनाया तो है मूर्ति ठीक है लेकिन नाक टेढ़ा रखा है एक मूर्ति का। वो जो मूर्तिकार था ना उठ खड़ा हुआ, कहां टेढ़ा है दिखाओ जरा। कहते आ जाओ जा, बस यही इतना ही काम था। इस दुनिया में जो है ना गुरु महाराज यहां उपदेश कर देने को रहे ना भरिए पाइए, शरीर करके कोई अमर नहीं हुआ है। जो इस ज्ञान को इस उपदेश को समझता है उसका लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मिले, भूल चुक दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।